Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. जय श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी की. अध्याय चार श्लोक क्रमांक अध्याय चार स्कंद चार अध्याय 29 और श्लोक क्रमांक 36. अतात्मानो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परंपरा संस्कृतिस्तद व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरो अथात्मानो अथात्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परंपरा संस्कृतिस्तद व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरो अथात्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परंपरा संस्कृतिस्तद व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरो अतात्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परंपरा संस्कृतिस्तद व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरो अतात्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परंपरा संस्कृतिस्तद विवच्छेदो भक्त्या परमया गुरो अतात्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परंपरा संस्कृतिस्तद विवच्छेदो भक्त्या परमया गुरो हम जो 37th श्लोक है वो भी पढ़ेंगे एक बार। वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहितः सदृचिनेन वैराग्यम् ज्ञानम् च जनयिष्यति। भाषांतर अतः आत्मनः जीवका अर्थभूतस्य वास्तविक रुचि वाले का यतः जिससे अनर्थ समस्त अवांछित वस्तुओं का परंपरा श्रृंखला संस्कृति ही भौतिक संसार तत् उसका व्यवच्छेद विच्छेद भक्त्या भक्ति से परमया शुद्ध गुरो परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि को वासुदेवे वासुदेव में भगवती श्री भगवान भक्ति योग भक्ति समाहितः एकाग्रचित्त सदृचिनेन पूर्ण रूप से वैराग्यम विरक्ति ज्ञानम पूर्ण ज्ञान च तथा जनयिष्यति प्रकट करता है। भाषांतर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रोपा द्वारा जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। इसका एकमात्र निवारण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी ही शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और न अपने असली ज्ञान को ही प्रकट कर सकता है। तात्पर्य कृत्रिम भौतिक परिस्थिति से विरक्त होने का यही उपाय है। इसका एकमात्र निवारण है कृष्ण भावनामृत को अपनाना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा में निरंतर लगे रहना। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और इस सुख को प्राप्त करने हेतु जो विधि अपनाई जाती है वह स्वार्थ कहलाती है। दुर्भाग्यवश इस संसार के भीतर भटकता बद्ध जीव यह नहीं जानता कि उसके स्वार्थ के चरम लक्ष्य वासुदेव है। संस्कृति अर्थात भौतिक अस्तित्व का प्रारंभ मोहग्रस्त देहात्म बुद्धि से होता है और इसके फलस्वरूप उनके अवांछित वस्तुओं की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। ये अवांछित वस्तुएं वस्तुतः विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के लिए मानसिक आकांक्षाएं होती है। इस प्रकार मनुष्य इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। मनुष्य को पहले मन को वश में करना होता है जिससे मन की आकांक्षाओं की शुद्धि हो सके। यह विधि नारद पंचरात्र में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम के रूप में वर्णित है। जब तक मनुष्य अपने मन को शुद्ध नहीं कर लेता तब तक इस भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। जो क्या भौतिक क्लेश जो उसके लिए व्यर्थ है भक्ति की विधि अपना लेने से दूर किए जा सकते हैं, किंतु सर्वसाधारण लोग इसे नहीं जानते। अतः विद्वान श्री व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जो परम सत्य से संबंधित है। अनर्थ अर्थात अवांछित वस्तुएं एक जीवन से दूसरे तक चलती रहती है। इस बंधन से निकलने हेतु मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति अपनानी होती है। इस प्रसंग में गुरु शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ भारी या श्रेष्ठ के रूप में किया जा सकता है। श्री ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था, गुरुर न सस्यात् सुजनं न सस्यात् नमोचेत यः समुपेत मृत्युम्। जब तक अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के अवागमन से बाहर न निकाल सके मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु का पद स्वीकार न करे। यह भौतिक संसार वास्तव में विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया की श्रृंखला है। यही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। इस क्रिया को वासुदेव की सेवा में लगकर ही रोका जा सकता है। भक्ति उन कार्यों को सूचित करती है जो भगवान वासुदेव की सेवा में संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है अतः मनुष्य को देवताओं की सेवा न करके उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। भक्तिमय सेवा का शुभारंभ नवजिज्ञासु अवस्था से होता है, जो विधि विधानों का पालन करने की अवस्था है, और यह श्री भगवान की स्वतः स्फूर्ति प्रेममयी सेवा की अवस्था तक विस्तारित होती है। सभी अवस्थाओं का लक्ष्य भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना है। जब मनुष्य वासुदेव की भक्ति में अत्यधिक अग्रसर हो जाता है तब वह शरीर की सेवा से अर्थात भौतिक अस्तित्व में उसकी उपाधि युक्त अवस्था से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाता है और इस प्रकार विरक्त होकर वह वास्तव में ज्ञान में पारंगत हो जाता है और भगवान वासुदेव की सेवा में भली भांति संलग्न होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। प्रत्येक जीव अपनी वैधानिक स्थिति के फलस्वरूप श्री कृष्ण का सनातन दास है। जो भी वह भगवान वासुदेव की भक्ति प्रारंभ करता है उसे उसकी वैधानिक स्थिति प्राप्त हो जाती है। यह स्थिति मुक्त अवस्था कहलाती है। मुक्तिर ही मुक्त अवस्था में मनुष्य अपनी मूल कृष्ण भक्ति की स्थिति में रहता है। वह मैं तथा मेरा के मोह के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली अनेक प्रकार की सेवाओं, सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा, जाति सेवा, कुत्ते की सेवा, वाहन सेवा आदि को तिलांजलि दे देता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में एक व्याख्या की गई है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य तुरंत अहेतुकी ज्ञान तथा इस संसार से विरक्त विरक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य को किसी भौतिक इच्छा, मानसिक चिंतन या सकाम कर्म के बिना वासुदेव की सेवा में लग जाना चाहिए। 38 वो भी श्लोक हम पढ़ेंगे। सोचिरा देव राजर्षे स्यात् अच्युत कथाश्रयः, शृणुतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यात् धीयतः। हे राजर्षि, जो श्रद्धावान है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता रहता है, जो सदैव कृष्ण चेतना की अनुशीलन तथा श्री भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वह शीघ्र ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने योग्य हो जाता है। वासुदेव के दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने का अर्थ यह है, श्री भगवान के गुणों को निरंतर सुनते रहना। भक्ति योग के सिद्धांत है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये एकमात्र साधन है जिनसे पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। श्री भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त करता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन् मिलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीउत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितां तां संजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगनलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, उपस्थित सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। उसके साथ ही साथ आप इस कथा में आए तो उसी के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज हम चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। उसमें 38 श्लोक 36, 37 और 38 ऐसे तीन श्लोकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि हम देखेंगे, यदि इस 36 श्लोक में कहा गया है कि जब भगवान के शरण हम जब ग्रहण कर लेते हैं, तभी जो बारंबार जन्म तथा मृत्यु जो सहनी पड़ती है, वह मृत्यु या इस चक्र से हम, भवबंधन से हम परे जा सकते हैं। तो इस श्लोक से हम यही सीख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान की शरणागति हम ले सकते हैं। और 38 श्लोक जो है, तो उस श्लोक में कहा गया है कि श्रवण किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो दो विषयों में हम चर्चा करेंगे आज। एक है कि भगवान के प्रति शरणागति किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ भगवान के श्रवण पर किस प्रकार हम निर्भर हो सकते हैं। तो 11वें अध्याय में एक श्लोक आता है, तव विकृतम कृष्ण अनुनाम परम मंगलम कर्ण पीयूष आसाध्य त्यजंती अन्य स्पृहाम स्पृहाम जनम। तव विकृतम कृष्ण, तो इसका अर्थ है कि हे भगवान, जो आपकी लीला है, तव विकृतम कृष्ण, हे कृष्ण, जो आपकी लीला है वो किस प्रकार से है, परम मंगलम है। तो आपकी कथा सबको मंगलकारी है। आपकी कथा जो भी व्यक्ति सुनता है उसके जीवन में कृतकृत्य हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकार की जो कथाएं है तो सुनना बहुत महत्वपूर्ण बनता है। कर्ण पीयूष आस्वाद्य, आस्वाद्य का अर्थ होता है कि टेस्ट करना। तो हम कर्णों के द्वारा भगवान के कथाओं का श्रवण करते हैं, कर्ण पीयूष आस्वाद्य। और जो भी व्यक्ति भगवान के कथाओं का अपने कर्णों से आस्वाद लेता है वह अन्य स्पृहाम जन्म, अन्य स्पृहा जो अलग चीजें, जो बाकी सब चीजें है तो उस चीजों से वो परे रहता है। तो अन्य स्पृहाम इसमें कौन सी चीजें आ सकती है, तो अलग अलग जो भी भौतिक संसार में अलग अलग अपने इंद्रियों के संबंधित जो भी चीजें है तो वह चीजें इसमें आ सकती है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान के कथाओं में संलग्न होता है वह अन्य बाकी चीजों से परे अपने आप रह जाता है। तो इसलिए भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का पान करना बहुत अनिवार्य बनता है। तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से हम भगवान के श्रवण में हम किस प्रकार से लग सकते हैं। प्रथम है कि तत्श्रवणम, भगवान की कथाओं को पहले तो सुनना चाहिए। दूसरा सुपठन, तो बहुत अच्छे प्रकार से भगवान की कथाओं का पठन करना जरूरी है। हम भगवान की कथाओं को लिख भी सकते हैं और जो हमने लिखा है उसको बारंबार पढ़ भी सकते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो श्रील प्रभुपाद है वो खुद अपने ग्रंथों को लिखते हैं, मगर अपने ग्रंथों को लिखने के पश्चात वह ग्रंथ बारंबार पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। तो इसलिए जो भी हमने लिखा है उसको बारंबार हम भगवान के संबंधित जितना भी हमने लिख डाला है तो उसको बारंबार हम पढ़ सकते हैं। और तीसरा है विचारण, तो विचारण का अर्थ है कि समझना। जो भी शास्त्रों में चीजें बताई गई है उसको श्रवण करना, उसको लिखना और उसके साथ ही साथ उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उसको समझकर अपने जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए तो ये चीजें, तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, तत्श्रवण, तत्श्रुणवन, सुपठन और विचरण। तो फिर एक बार मैं समस्त यहाँ पे उपस्थित भक्तों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज वो इस भगवान के कथाओं का पान करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो शरणागति, इस प्रकार शरणागति जो विषय है तो इस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और उसमें हम देखेंगे कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दो चीजें कही गई है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दो चीजें कही गई है और उसमें से प्रथम है कि दुखालयम और दूसरा है अशाश्वतम। तो भगवान इस संसार का वर्णन दुखालयम, उसके साथ ही साथ ये जगत पूरा अशाश्वत है, इस प्रकार से बोल देते हैं। और उसी समय ईशोपनिषद कहता है कि ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो एक तरफ भगवान कहते हैं कि भगवान पूर्ण है और जो भी चीज भगवान से आती है वह पूर्ण है, भगवान भी पूर्ण है और जो भी भगवान बनाते हैं वह भी पूर्ण है। तो जिस भगवान ने इस संसार को बनाया है वह दुखालयम और अशाश्वतम किस प्रकार से बनता है, भगवान स्वयं कहते हैं कि यह जगत तो दुखालयम है और अशाश्वत भी है। तो फिर दोनों भी है तो इस जगत को, इस संसार को हम पूर्ण किस प्रकार से बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि ये तो अशाश्वत है, कुछ दिनों के बाद यह संसार नष्ट होने वाला है। तो इसका उत्तर यही है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि जिस प्रकार से यह सृष्टि में किसी को प्यास लगने के बाद उसके लिए पानी है, किसी को भूख लगने के बाद उसके लिए अनाज है, उसी प्रकार से जिसके मन में प्रश्न है उसके साथ ही साथ उसका उत्तर भी इस संसार में लिखा गया है। और यदि इस संसार में दुख है तो उसका एक ही अर्थ और उसका एक ही उत्तर है और वो उत्तर क्या है कि शरणागति। तो भगवान के प्रति शरणागति यही इस दुखों पर उत्तर है। तो इस प्रकार से यह जितना भी जगत हम देख सकते हैं, यह संसार हमारे सामने है, वह भी एक पूर्ण ही है। तो इसलिए भगवान जो भी बनाते हैं वह एक कंप्लीट अपने आप में चीज हो सकती है। तो भगवान के प्रति शरणागति स्वीकार करना ये अनिवार्य चीज है, क्योंकि भगवान के प्रति शरणागति से ही हम अपने दुखों को और इस भवबंधन से भवच्छेद करके परे जा सकते हैं। तो तीन प्रकार की शरणागति होती है। पहला है कृष्णाय अर्पित देहस्य, जो भगवान श्री कृष्ण है तो उनके सेवा में अपना देह लगाना, अपना शरीर लगाना। कोई कह सकता है कि किस प्रकार भगवान के सेवा में हम अपना शरीर किस प्रकार से लगाए, तो अपने चरणों से चलकर हम मंदिर में जाते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि हमने अपना देह भगवान के चरणों में लगाया है। मंदिर में आने के पश्चात हम दंडवत कर लेते हैं तो हम अपना देह भगवान के सामने झुकाते हैं। इस प्रकार से हम अपना देह भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, कृष्णाय अर्पित देह से। दूसरी बात यह है कि निर्मम स्यात् अहंकृते, हमने अपना शरीर तो भगवान के सेवा में लगाया है तो अभी अपना अहंकार भी भगवान के सेवा में लगाना है। तो अहंकार किस प्रकार से लगा सकते हैं, तो अपना अहंकार त्याग कर हम भगवान का, क्योंकि जो अहंकार है एक जीवात्मा का सही अहंकार है कि कृष्णेर हम दास है, भगवान के हम दास है, तो यही एक अहंकार है, कृष्णेर स्वरूप है नित्य दास, ऐसा एक श्लोक आता है। तो इसी से हम जान सकते हैं कि हम अपना अहंकार छोड़कर भगवान का दासत्व स्वीकार करना, जिस प्रकार हनुमान जी ने भगवान की सेवा की, दास्य रूप में भगवान की सेवा की, इस प्रकार से हम अपना अहंकार त्याग कर हम भगवान के सेवा में लग सकते हैं। मनस्तत् स्वरूपत्वम, ये तीसरी चीज है कि जो अपना मन है, हमने शरीर तो भगवान की सेवा में लगाया, अहंकार की अहंकार भी भगवान की सेवा में लगाया, और उसके बाद मन, तो इस मन को भी भगवान की सेवा में लगाना है। तो ऐसे तीनों भी चीजों को यदि हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तभी हम जान सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से भगवान से शरणागत है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि चार प्रकार के लोग भक्ति में आते हैं, वैसे भगवद्गीता भी कहती है कि चार प्रकार के लोग भक्ति में आते हैं, उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि चार प्रकार के लोग भगवान के भक्ति में आते हैं। तो भगवत गीता हम जानेंगे, पहले भगवत गीता में कहा गया है कि चार प्रकार के लोग भगवान के मंदिर में आते हैं और स्वयं को शरणागत रूप में स्वीकार करना, स्वीकार करने की अभिलाषा रखते हैं। तो उसमें आर्त है, जो दुखी लोग होते हैं वो आते हैं, कोई लोग दुखी होता है तो भगवान के पास जाता है। दूसरे प्रकार के लोग है अर्थ, जिन लोगों को बहुत पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, तो इस प्रकार के लोग भी भगवान के पास जाते हैं, हे भगवान मुझे ये दो, हे भगवान मुझे ये दो, इस प्रकार से अलग अलग चीजें भगवान से मांग लेते हैं। तीसरा प्रकार का व्यक्ति है जिज्ञासु, जो भगवान को समझना कुतूहल पूर्वक जानता है, कुतूहल पूर्वक भगवान कौन है, ये सृष्टि क्या है, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, तो ऐसा व्यक्ति भी, जिज्ञासु प्रकार का व्यक्ति भी भगवान के प्रति आकर्षित होता है। और चौथा प्रकार का व्यक्ति है वो है ज्ञानी, वो है भक्त। तो भगवान की सेवा में लगाने हेतु वह भगवान के मंदिर में आता है। तो इस प्रकार से भगवद गीता कहती है कि चार प्रकार के लोग भगवान के मंदिर में, भगवान के तरफ आकर्षित होते हैं। अभी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि चार प्रकार के लोग आते हैं, तो वो चार प्रकार के लोग कौन से हैं फिर? तो पहला प्रकार है फियर बाउंड, तो जो लोग मृत्यु से डरते हैं, जो लोग यमराज जी से डरते हैं, जो लोग नरक लोक से डरते हैं, जो डरने वाले लोग हैं, तो डरने वाले लोग भगवान के पास आते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कि जिन व्यक्तियों को अपने इच्छाओं की पूर्ति करने की अभिलाषा है, ऐसे व्यक्ति भी भगवान के पास आते हैं, उसको हम कहेंगे फ्रूट बाउंड, कि मेरी ये इच्छा है भगवान, आप मेरी इच्छा को पूर्ति कीजिए। तो ऐसे लोग भी भगवान के पास आते हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं कर्तव्य, ड्यूटी बाउंड। अभी मनुष्य यदि तो दुर्लभ है, कुछ भक्ति मार्ग में जाना चाहिए, कुछ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा कुछ तो अपने परंपरा में सुना है बड़े लोगों से, तो इसलिए हम ड्यूटी बाउंड है, कर्तव्य है, भगवान के बारे में जाना है, ये मेरा धर्म भी है, तो इसलिए लोग जाते हैं। मगर चौथे प्रकार के भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि चौथा जो प्रकार है उसमें भक्त जो है वो अहेतु की अप्रतिहता, जो कुछ भी हेतु नहीं है, कुछ अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति करने की कुछ इच्छा अपने मन में नहीं रखता हो, तो ऐसा व्यक्ति केवल भगवान को प्रसन्न करने हेतु मंदिर में आता है। जो चौथा प्रकार का व्यक्ति है वह परम श्रेष्ठ प्रकार का भक्त है और व्यक्ति है। तो इसलिए हमें कौन से प्रकार की शरणागति स्वीकार करनी हो तो यह हमें डिसाइड करना होगा। तो एक हिरण्यक्ष है, तो हिरण्यक्ष क्या करते हैं कि एक पृथ्वी को उठाकर लेके जाते हैं समंदर की तरफ। उसी समय उस पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान वराहदेव आते हैं, और जब भगवान वराहदेव आते हैं तो भगवान वराहदेव उस पृथ्वी को बचाने की चेष्टा करते हैं। उसी समय जो हिरण्याक्ष है तो उस असुर को भयानक ऐसा क्रोध आता है, उसको लगता है कि मेरे कार्यों में ये व्यक्ति कठिनाइयां ला रहा है, तो इसलिए वो अलग अलग शस्त्रों से भगवान वराहदेव को मारने की वो भी एक चेष्टा कर लेता है। तो जब ये मारता है तब जो भगवान वराहदेव है उनको लगता है तो ये तो मेरे ऊपर फूल बरस रहा है, तो ये शस्त्रों से मारता है, मगर भगवान इतने शक्तिशाली है तो उसके शस्त्रों से भगवान को कुछ भी कष्ट नहीं होता। तो ये मगर भगवान भी इस हिरण्यक्ष को इस प्रकार से लेते हैं कि भगवान को लगता है ये भी अपना स्वयं का देह मेरे सेवा में लगाने का पराकाष्ठा कर रहा है, तो इसलिए भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। मगर यदि हम देखेंगे यशोदा माई, तो यशोदा माई क्या कर रही है कि भगवान को एक लाठी से मारने का प्रयास कर रहे हैं। जब भगवान ने मक्खन चुराया था तब उसी समय यशोदा माई आती है और उस मक्खन चुराने के पश्चात भगवान को लाठी से मारने का प्रयास करती है, मगर हिरण्याक्ष भी भगवान को मार रहा है और यशोदा माई भी भगवान को मार रही है, मगर फर्क क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो एक शरीर भगवान के सेवा में लगा रहा है हिरण्याक्ष, मगर उसका हेतु बुरा है, मगर उसके साथ ही साथ जो यशोदा माई है अपना शरीर भगवान के सेवा में लगाती है और मन भी लगाती है, तो इसलिए शरीर के साथ साथ मन, अहंकार और अपना तीनों भी चीजें भगवान की सेवा में लगाती है, तो इसलिए केवल शरीर भगवान की सेवा में लगाने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मन भी अपना भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि इसमें हम हिरण्यक्ष की बात करेंगे तो हिरण्यक्ष अपना शरीर लगा रहा है, मगर उसका जो उसके अंदर की जो उसका मोटिव है वो बहुत बुरा है। तो हम जान सकते हैं कि भगवान तो शरणागति अपने स्वीकार करने के लिए तत्पर है, मगर हम पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत है या नहीं वह देखना जरूरी होता है। तो वैसे ही रामायण में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है, जब विभीषण भगवान राम जी के पास जाते हैं और शरणागति पूर्वक जाते हैं, तब वहां पे अलग अलग सुग्रीव इत्यादि लोग उपस्थित होते हैं, और जब विभीषण आता है तब भगवान श्री राम सभी अलग अलग भक्तों को पूछते हैं कि इस व्यक्ति को शरणागति देना चाहिए नहीं, तो सभी लोग अपना अपना मत उस पर प्रकट कर लेते हैं।
और जब हनुमान जी को जब पूछा जाता है तो हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान, आप तो परम श्रेष्ठ है, आप तो किसी को भी शरणागति दे सकते हैं। तब रामचंद्र बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे सकृत एवं प्रपन्नोयस् तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदातस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। कि सकृत एव प्रपन्नोयस्, कि कौन से भी व्यक्ति ने एक बार भी मुझे कहा कि हे भगवान मैं आपका हूं, तवास्मि इति याचते, मैं तो यहां पे खड़ा हूं खाली सुनने के लिए कि हे भगवान मैं आपका हूं, इतना ही सुनने के लिए मैं यहां पे खड़ा हूं, तो ऐसे व्यक्ति को अभयम सर्वदातस्मै, मैं अभय दान प्रकट करता हूं और ये मेरा व्रत है। तो भगवान स्वयं खड़े हैं अपने भक्तों को आश्रय प्रदान करने के लिए, शरणागति प्रदान करने के लिए। एक बार खाली हमें खड़ा रहकर एक बार कहना है कि हे भगवान मैं आपका हूं, तो भगवान त्वरित अपनी बात सुन लेते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम, यदि कौन सा व्यक्ति पत्र पुष्प फल या फिर थोड़ा पानी भी अर्पण कर लेता है तो भी मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो यहां पे जो बात आती है, तो शरणागति की तो कौन सी बात है, शरण में तो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान एक बार भी कह दिया तो भगवान तो अपनी शरण लेने के लिए तैयार है। और एक प्रसंग ऐसा ही आता है भागवत में कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिगांसया पाय यद्यपि साध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजम। तो पूतना जो बाल घातिनी है, ऐसी पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आती है, मगर फिर भी भगवान कृष्ण इतने दयालु है, कम वा दयालुम, इतने दयालु है कि शरणम व्रजम, उस बाल घातिनी ऐसी पूतना को भी शरण दे देते हैं, शरण प्रदान कर लेते हैं, उसको अपने धाम में धात्री का एक उपाधि दे देते हैं। तो भगवान तो इतने दयालु है तो सभी व्यक्तियों को बहुत त्वरित शरणागति देने के लिए तत्पर है। तो ऐसे ही एक बार ऐसा प्रसंग आता है और हनुमान जी कहते हैं कि न जन्म न्यूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धि न आकृति तोष हेतु तैरेत विसृष्टान अपिनो वनो कसस चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे पास भगवान को देने के लिए क्या है, न जन्म, तो मेरा तो इतने उच्च कुल में जन्म नहीं हुआ, मेरा तो जन्म एक बंदर के योनि में हुआ है, तो भगवान को मैं क्या दे सकता हूं। यदि एक व्यक्ति बंदर की योनि में जन्म लेता है तो भगवान को देने के लिए उसके पास क्या हो सकता है। तो मेरे पास तो न जन्म, मेरे पास तो जन्म भी नहीं है, न सौभगम, मेरा सौभाग्य भी इतना नहीं है कि मैं भगवान को कुछ दे सकूं, न वांग, मेरी वाचा भी इतनी पवित्र नहीं है कि भगवान को मैं अपनी वाचा अर्पित कर सकूं, न बुद्धि, मैं तो बंदर की योनि में हूं और बंदर की योनि कहां तक जा सकती है, आहार निद्रा भय मैथुन, इन चारों चीजों में ही बंदर की सोच हो सकती है, तो मैं अपनी बुद्धि भी भगवान को नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, न आकृति, और आकृति का अर्थ होता है कि मैं बहुत दिखने में बहुत हैंडसम भी नहीं हूं, तो मेरे पास ना बुद्धि है, ना जन्म है, ना सौभाग्य है, इतना ही नहीं, तो मेरे पास तो अपना स्वयं का स्वरूप भी इतना अच्छा नहीं है कि भगवान के सामने जाने के पश्चात भगवान मेरे तरफ देखकर खुश हो जाए, तो मैं भगवान को देकर भी क्या दे सकता हूं, कुछ नहीं दे सकता। मगर फिर भी जो लक्ष्मणाग्रज है, जो लक्ष्मण के बड़े भाई है, इतने दयालु है कि मेरे जैसे ऐसे वन में रहने वाले प्राणी को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से है भगवान इतने दयालु है कि सभी को अपना समझने के लिए और अपनाने के लिए और प्रेम लगाने के लिए तत्पर है। तो फिर यदि भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है तो हम क्या कर रहे हैं। तो यहां पे शरणागति की जो हम बात कर रहे हैं, तो भगवान तो तत्पर है हमें सब कुछ प्रदान करने के लिए। एक ही क्षण भगवान बोल रहे हैं कि मैं एक ही क्षण सब कुछ दे दूंगा, खाली आपको तवास्मि एक बार कहना है कि भगवान मैं आपका हूं। तो इसको तो हम कहेंगे कि इसको तो हम ठीक से शरणागति भी नहीं कह सकते, मगर भगवान तो स्वयं को देने के लिए तैयार है। तो इसके लिए यदि भगवान हमें कुछ प्रदान कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ तो भगवान के प्रति देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी एक आधा व्यक्ति प्रेम करता है, तो एक प्रेम एक तरफा नहीं होता, प्रेम दोनों तरफ से होना चाहिए। तो यदि भगवान का प्रेम हमारे तरफ है, यदि भगवान एक बंदर पर भी प्रेम कर सकते हैं, तो असल रूप में भगवान मानव जाति पर भी प्रेम कर सकते हैं। मगर हमें जो विमुख हम होकर बैठे हैं, उसको खाली भगवान की तरफ अपना मुंह घुमाना है और भगवान की तरफ देखना है। तो इसलिए यदि भगवान यदि तत्पर है, तो हमें भी भगवान के रंग में रंग जाना चाहिए। तो इसलिए दोनों तरफ का जो प्यार होता है, तो वही एक असल में प्यार हो सकता है। और जो व्यक्ति है, तो किस प्रकार से हम समझे कि कौन सा व्यक्ति भगवान को शरणागत है? हमने देखा कि भगवान तो स्वयं शरणागति प्रदान करने के लिए तत्पर है, मगर उसके साथ ही साथ अपना योगदान भगवान के प्रति क्या है, तो हमारा भी योगदान भगवान के प्रति होना चाहिए, क्योंकि प्रेम है वो एक तरफा नहीं हो सकता। तो फिर अभी जो व्यक्ति शरणागत है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? तो जो व्यक्ति शरणागत है, तो उसके लक्षण इस प्रकार से है कि वासुदेवे सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो भगवान के प्रति व्यक्ति शरणागत है, वह सभी तरफ सभी जगह पर वासुदेव को देखने की पराकाष्ठा कर लेता है, तो वही व्यक्ति असल में शरणागत है, ऐसा हम समझ सकते हैं। एक सुंदर सी कथा आती है, अष्ट सखियों में एक सखी होती है, उनका नाम चित्र सखी है। और यह सखी भगवान का चित्र रेखाटन कर रही थी, और जब यह भगवान का चित्र बना रही थी, उसी समय वहां पे राधा रानी आती है, और राधा रानी आने के पश्चात वो चित्र को देखकर इतनी खुश हो जाती है और कहती है कि ये जो चित्र में व्यक्ति दिखाई देता है, उस व्यक्ति को मेरा पूरा जीवन समर्पित है, क्योंकि वह चित्र इतना मधुर था, जो चित्र सखी ने पूरी जान लगाकर बनाया था, तो इसलिए, और वह भगवान श्री कृष्ण का चित्र था, तो वो देखते ही तुरंत राधा रानी कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन इस व्यक्ति को नौछावर। उसी समय इस प्रकार से राधा रानी और चित्र सखी की वार्तालाप चलता रहता है। उसी समय राधा रानी के कर्णों पर एक मधुर आवाज आती है, और वह आवाज बांसुरी की होती है। तो वो मधुर आवाज इतनी मधुर होती है कि राधा रानी तत्पर कह देती है कि जो भी व्यक्ति इस बांसुरी को बजा रहा है, उस व्यक्ति को मेरा पूरा जीवन समर्पित है। मगर तुरंत राधा रानी सोचने लगती है, अरे मैं तो एक ही हूं, अभी मैंने कहा कि जो व्यक्ति इस चित्र पे दिखाई देता है, उस व्यक्ति के लिए मेरा जीवन है। और तुरंत ही दूसरे क्षण में बोल रही हूं कि जो भी व्यक्ति ये बांसुरी बजा रहा है, उस व्यक्ति को मेरा जीवन समर्पित है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा जो स्वभाव है, या फिर मेरी जो सोच है, वो बहुत गंदी है, क्योंकि मैं एक ही हूं और दो व्यक्तियों के प्रति समर्पित किस प्रकार से कर सकती हूं। जब ऐसी सोचने लगती है राधा रानी, तभी उसी समय गैया आती है, और गैयों के पीछे एक सुंदर सा व्यक्ति आता है, वो जो गैयों को संभालता है। तो उस व्यक्ति को देखकर तुरंत राधा रानी कंट्रोल नहीं कर पाती और कह देती है कि इस जो भी व्यक्ति इस गैयों को संभाल रहा है, उस व्यक्ति को मेरा पूरा जीवन समर्पित। ऐसा कहने के बाद राधा राधा रानी फिर से भ्रमित हो जाती है, कहती है अरे शायद मेरा स्वभाव व्यभिचार युक्त बनते जा रहा है, मैं एक व्यक्ति के प्रति आसक्त नहीं हूं, मैं अनेकों व्यक्तियों के प्रति आसक्त हूं। इस प्रकार से वो सोचते रहती है और शोक करने में संलग्न हो जाती है। ऐसा कहते कहते ही चित्र सखी राधा रानी को कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि ये तीनों भी जगह पे जिस व्यक्ति को आप देख रही हो ये वो व्यक्ति एक ही है, तो इसलिए आपकी सोच एकदम सही है। तो इस प्रसंग से हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति शरणागत है वो व्यक्ति वासुदेवम सर्वमिति इस प्रकार से इस प्रकार के भाव में रहता है, सभी चीजों में वो भगवान को ही देखता है। वैसे ही एक बार श्री प्रभुपाद जी जब प्रभुपाद ने जुहू का मंदिर बनाया था और जब उन्होंने जुहू का मंदिर बनाया था तब उसी क्षण वहां पे एक व्यक्ति आता है, वह एक अभिलाषा रखता है प्रभुपाद जी को मिलने की। प्रभुपाद जी भी उनको मिल लेते हैं और मिलने के बाद वह व्यक्ति कहता है कि हे प्रभुपाद जी, मैं एक ज्योतिष हूं और मेरे अनुसार जो आपने जो मंदिर बनाया है वो थोड़ा सा गलत है, या फिर हम जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है तो उसको हम क्या कहेंगे, वास्तु शास्त्र ने कह सकते हैं। तो वो व्यक्ति बोलता कि आपने जो मंदिर बनाया है वो गलत है। प्रभुपाद जी ने कहा कि कैसे गलत हो सकता है, ये मंदिर है तो भगवान का मंदिर है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपका मंदिर इस प्रकार से गलत है क्योंकि आपके भगवान का मुख गलत दिशा में है, इस गलत दिशा में मंदिर का भगवान क्या मुंह नहीं होना चाहिए, मुख नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए ये जो भगवान यहां पे खड़े हैं इनका नाम रास बिहारी है, और जो भगवान रास बिहारी है वो रास नृत्य करते हैं, और जो व्यक्ति नृत्य में लगा है उसका मुख तो हर क्षण बदलते रहता है। तो इसलिए ये व्यक्ति जो जिसका मुख बदलते रह रहा है तो सही है, तो फिर एक जगह एक एक ही दिशा में कैसे हो सकता है, उनका तो मुख हर जगह पे है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी का भी यही नजर है कि वासुदेवम सर्वमिति, हर जगह पे हर दिशा में भगवान को देखना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जहां पे भी देखेंगे हम जगन्नाथ को ही देखेंगे। बही नरसिंगा हृदय नरसिंगा, अंदर भी नरसिंगा है और सब तरफ नरसिंगा है। तो इसलिए जो भी भगवान के भक्त है, जो समर्पित और शरणागत भक्त है, वह भक्त सभी दिशाओं में भगवान को देख लेते हैं। और भगवत गीता भी इस चीज की एक पुष्टि करती है। भगवत गीता कहती है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यह श्लोक बहुत परिचित है सभी लोगों को, सभी लोग जानते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि मामेकम शरणम व्रज और सर्व धर्मान परित्यज्य, भगवान बोल रहे सर्व धर्मान परित्यज्य मगर क्या छोड़ना है, सभी धर्मों को तो छोड़ना है मगर छोड़ना क्या है, सब लोग कंफ्यूज है क्या छोड़ना है। किसी को लगता है ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, घर छोड़ना है, वो छोड़ना है, पत्नियों को छोड़ना है, बच्चों को छोड़ना है, घर छोड़ना है, मगर असल में छोड़ना क्या है। तो बहुत एक आसान है, क्या छोड़ना है कि अनुकूलस्य संकल्प, जो भक्ति के लिए अनुकूल चीजें है वही करनी है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो ABCD हम इस्कॉन की चार चीजें है, ए फॉर एसोसिएशन, भक्तों के संग में रहना है, बुक्स बी फॉर बुक्स, भगवान जितने जो ग्रंथ है वैदिक जो ग्रंथ है उनका पठन पाठन करना है, सी फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना है, डी फॉर डाइट, भगवान को जो अर्पण किया हुआ प्रसाद वही ग्रहण करना है। तो इसलिए ये चार चीजें करनी है, और क्या करना नहीं है, प्रतिकूलस्य वर्जनम, तो चार चीजें करनी नहीं है, उसमें नशा करना नहीं है, जुगाड़ नहीं है, अवैध स्त्री संग नहीं और मांसाहार नहीं। तो जो भी व्यक्ति अनुकूल और प्रतिकूल इस प्रकार से जो चीजें कर लेता है, तो असल में वही करना है जो यहाँ पे सर्वधर्मान, जो भी छोड़ने की बात आती है तो ये करने के लिए कहा गया है। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कर लेता है, जो चार अनुकूल, जो भगवान के प्रति अनुकूल चीज है वो कर लेता है, और जो प्रतिकूल है, जो भी भक्ति में बाधा लाने वाली चीज है वो छोड़ देता है, सच में जो व्यक्ति इस प्रकार से कर सकता है तो वह व्यक्ति समझ सकता है कि मैं थोड़ा शरणागति की तरफ जा रहा हूं या फिर मैं शरणागत हूं। तो पहला हमने देखा जो अलग अलग शरणागति के उपलक्ष्य में अलग अलग जो जितने भी हमने ये देखे उदाहरण, वह आत्मनिवेदन के उदाहरण थे। अभी दूसरा प्रिंसिपल हमने देखा कि अनुकूल क्या है और भक्ति में प्रतिकूल क्या है। जो शरणागति के 6 अंग बताए हैं तो उनमें से एक है आत्मनिवेदन, दूसरा है अनुकूलस्य संकल्प, तीसरा प्रतिकूलस्य वर्जनम, चौथा है गोत्रुप्ते वर्णम। कि भगवान पालन करते हैं, भगवान सबके पालन करता है, यह हमारे मन में निश्चय ही होना चाहिए। पांचवा है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण सभी व्यक्तियों का अवश्य रक्षण करते हैं, इस पर बहुत जोर होना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं जब प्रहलाद महाराज, जब शंड और अमरक इन दोनों ने प्रहलाद महाराज को मारने के लिए एक कृत्या बनाई थी, एक कृत्या प्रकट की थी, तो वह कृत्या इतनी तेजी से प्रहलाद महाराज को मारने के लिए आई थी त्रिशूल लेके, मगर प्रहलाद महाराज एक इंच भी उन्होंने अपना पग पीछे नहीं हटाया। तो इससे हम देख सकते हैं कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हर एक व्यक्ति का रक्षण करते हैं। दूसरा एक उदाहरण आता है 9वें स्कंद से कि अंबरीश महाराज है, और अंबरीश महाराज को मारने के लिए दुर्वासा मुनि अपना जटा निकालते हैं और जटा से एक राक्षस बना लेते हैं, प्रकट करते हैं, और वह राक्षस तलवार लेके अंबरीश महाराज के पीछे इतना तेजी से दौड़ता है उनको मारने के लिए, मगर वहां पे भी अंबरीश महाराज एक क्षण भी विचलित नहीं होते। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करते न चचाल भू, जो व्यक्ति विचलित नहीं होता हर एक क्षण में, जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित है, जो व्यक्ति को पता है कि भगवान अवश्य रक्षण करने वाले हैं कौन से भी परिस्थिति में, तो ऐसा व्यक्ति विचलित नहीं होता। यही है कि भगवान पर अवश्य रक्षिबे कृष्ण, इस पर भरोसा होना चाहिए। और पांचवा है दीनता, तो दीन, छठा है कि दीनता, तो नम्रता पूर्वक भगवान या भक्तों में रहना, या फिर जो तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न हम सेवया, जब हम गुरु के प्रति हम कुछ सीखने के लिए जाते हैं तब गुरु के सामने नम्रता पूर्वक जाना चाहिए। तो यह शरणागति के 6 अंग है। तो जैसे 36 और 37 श्लोकों में शरणागति का वर्णन आता है, तो उस पर हमने कुछ चर्चा की, और जो 38 जो श्लोक है इसमें, तो उसमें भगवान के बारे में श्रवण का कुछ तो महत्व कहा गया है, तो इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। तो परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशः मिथो रथि मिथो तुष्टि मिथो निवृत्तिर आत्मनः। परस्परानुकथनम, भगवान कृष्ण का जो कथा है तो आपस में उन कथाओं का चर्चा होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति भगवान के कृष्ण कृष्ण की कथा आपस में चर्चा करता है तो पावनम भगवत यशः, तो भगवान की यश इतना पावन है, जो भगवान की यश का गान कर लेता है वो मंगल है या पावन है। तो इससे 3 चीजें होती है। पहली चीज है कि मिथोरति, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, यदि भगवान की कथा हम साथ में बैठकर सुन लेते हैं तो आपस में एक प्रेम बना रहता है। तो इसलिए मिथोरति मिथो तुष्टि, एक ही बार सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं भगवान की कथाओं से। और मिथो निवृत्तिर आत्मनः, और उसके साथ ही साथ जितने भी अनर्थ है वह एक ही बार नष्ट हो जाते हैं सभी के हृदय से। तो इसलिए भगवान के कथा से तीन चीजें होती है, वह है कि मिथोरति मिथो तुष्टि और निवृत्तिर आत्मनः, सभी प्रकार के अनर्थों से वह जीवात्मा निवृत्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे समय समाप्त हुआ है। आज हमने चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 36, 37 और 38 इन श्लोकों पर चर्चा की। इन श्लोकों का जो मेन थीम थी वो है शरणागति, और जो 38वां श्लोक है उसका हम फिर से एक बार एंड में पढ़ लेंगे उसको। हे राजर्षि, जो श्रद्धावान है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता है, तो जो श्लोक क्रमांक 38 है तो भगवान के श्रवण का महत्व कहा गया है। तो इसमें हमने देखा कि भगवान के श्रवण से मिथोरति मितोतुष्टि और निवृत्तिर आत्मनः, तो ये तीन चीजें होती है, ये देखा। हरे कृष्ण।